भागवत सार की श्रृंखला में चौथा स्कंद 16वें अध्याय पर चर्चा है, जहाँ राजा पृथु की स्तुति की जा रही है। इसके दूसरे श्लोक को पढ़ेंगे, कृपया दोहराइए। नालं वयं ते महिमानुवर्णने यो देववर्योऽवततार मायया वेनाङ्गजातस्य च पौरुषाणि ते वाचस्पतीनामपि बभ्रुमूर्धियः। नालं वयं ते महिमानुवर्णने यो देववर्योऽवततार मायया वेनाङ्गजातस्य च पौरुषाणि ते वाचस्पतीनामपि बभ्रमूर्धियः। नालं वयं ते महिमानुवर्णने यो देववर्योऽवततार मायया वेनाङ्गजातस्य च पौरुषाणि ते वाचस्पतीनामपि बभ्रमूर्धियः। न अलम समर्थ नहीं वयम हम ते आपकी महिमा महिमा अनुवर्णने वर्णन करने में यह जो देव भगवान वयम सर्वप्रथम वर्य सर्वप्रथम अवततार अवतरित हुआ मायया अंतरंग शक्ति अथवा अहेतु की कृपा से वेन अंग राजा वेन के शरीर से जातस्य उत्पन्न होने वाले की च तथा पौरुषाणी महिमामय कार्य ते आपका वाचहपतिनाम महान वक्ताओं का अपि यद्यपि बभ्रमुः चकरा जाते हैं धियः मन। अनुवाद और तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। गायकों ने आगे कहा, हे राजन, आप भगवान विष्णु के साक्षात अवतार हैं और उनके अहेतु की कृपा से आप पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। अतः हमने इतनी सामर्थ्य कहाँ है कि आपके महान कार्यों का सही सही गुणगान कर सकें। यद्यपि आप राजा वेन के शरीर से प्रकट हुए हैं, तो भी ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं के समान बड़े बड़े वाचक और वक्ता भी आपके महिमामय कार्यों का सही सही वर्णन नहीं कर सकते। तात्पर्य, इस श्लोक में मायाया का अर्थ है आपकी अहेतु की कृपा से। मायावादी चिंतक माया शब्द की व्याख्या मोह या असत्य कहकर करते हैं, किंतु माया का एक दूसरा भी अर्थ है, वह है अहेतु की कृपा। माया के दो प्रकार हैं, योग माया तथा महामाया। महामाया योग माया का विस्तार है और ये दोनों ही मायाएं भगवान की अंतरंग शक्ति की भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियां हैं। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, भगवान अपनी अंतरंग शक्ति से उत्पन्न होते हैं। अतः हमें इस मायावादी व्याख्या को कि भगवान बहिरंग शक्ति अर्थात भौतिक शक्ति द्वारा प्रदत्त शरीर में प्रकट होते हैं अस्वीकार कर देना चाहिए। भगवान तथा उनका अवतार पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं और वे कहीं भी और सर्वत्र अंतरंग शक्ति से उत्पन्न हो सकते हैं। यद्यपि राजा पृथु राजा वेन के तथा कथित मृत शरीर से उत्पन्न थे, किंतु तो भी वे भगवान की अंतरंग शक्ति से भगवान के अवतार थे। भगवान किसी भी वंश में प्रकट हो सकते हैं, कभी वे मत्स्य अवतार के रूप में तो कभी वराह अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। इस प्रकार भगवान अपनी अंतरंग शक्ति के द्वारा कहीं भी और सर्वत्र प्रकट होने के लिए मुक्त और स्वतंत्र हैं। कहा जाता है कि अनंत मुख वाले भगवान के ही अवतार अनंत भी भगवान की महिमा का वर्णन नहीं कर पाते, यद्यपि वे अनंत काल से ऐसा करते आ रहे हैं। तो फिर ब्रह्मा शिव तथा अन्य देवताओं का क्या कहना। कहा गया है कि भगवान शिव विरंचीनतम हैं, अर्थात वे ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा सदैव पूजित हैं। यदि देवताओं के पास भगवान की महिमा को व्यक्त करने के लिए समुचित भाषा नहीं मिल पाती तो भला अन्य लोग कैसे कर सकते हैं। फलतः सूत तथा मागध जैसे गायक राजा पृथु के विषय में कुछ भी कहने में अशक्त थे। उत्तम श्लोकों द्वारा भगवान की महिमा का वर्णन करके मनुष्य शुद्ध हो जाता है। यद्यपि हम भगवान की ठीक से स्तुति नहीं कर पाते, तो भी शुद्ध होने के लिए आवश्यक है कि हम ऐसा करने का प्रयास करें। इसका यह अर्थ नहीं है कि यदि ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवता उनका ठीक से गुणगान नहीं कर पाते तो हम करें ही नहीं। अपितु जैसा कि प्रहलाद महाराज ने कहा है, हम में से हरेक को अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान की महिमा का वर्णन करना चाहिए। यदि हम गंभीर एवं निष्ठावान भक्त हैं तो भगवान हमें सही ढंग से प्रार्थना करने की बुद्धि प्रदान करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगनललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वशास्त्राब्धि पीयूष सर्ववेदैक सत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैक दृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तो दिदादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते। मदेकबंधो मत्संगी मद्गुरो मन्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमोस्तुते। असाधु साधु तदाइन अतिनीचोचतः कर हानमुंच कदाचिन्माम प्रेम्णा हृत्कंठयो स्फुरा। हरे कृष्ण। पृथु महाराज प्रकट हुए भगवान के अंश अवतार शक्त्यावेश अवतार। ऐसे जीव जिनको भगवान शक्ति का आवेश देते हैं, अर्थात ऐसे जीव जिनसे किसी विशेष कार्य के लिए जिनको किसी विशेष कार्य के लिए भगवान अपनी ही शक्ति प्रदान कर देते हैं। दूसरे शब्दों में उनको वे अपने कार्य पूरे करने का माध्यम या निमित्त बनाते हैं, और भगवान के कार्य पूरे करने के लिए भगवान की शक्ति चाहिए, इसीलिए शक्ति प्रदान करते हैं और शक्त्यावेश अवतार कहलाते हैं। तो ऐसे कई अवतार हैं, नारद मुनि सनत कुमार इत्यादि पृथु महाराज जैसे, जिन्होंने भगवान की शक्ति को प्राप्त करके भगवान के ही जैसा आचरण करके फिर इस जगत में एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जिससे आगे आने वाली पीढ़ियां भगवान को प्राप्त कर सके। तो ऐसे ये पृथु महाराज का प्राकट्य हुआ। कल हम लोग सुन रहे थे कि पृथु महाराज ने कैसे नम्रता का प्रदर्शन करते हुए ये दिखलाया कि हमें अपनी प्रशंसा नहीं सुननी चाहिए। जब बंदी जनों ने प्रशंसा करना प्रारंभ किया तो रोक दिया पृथु महाराज ने कि मैंने अभी कोई कार्य किया ही नहीं है, प्रशंसा करनी है तो भगवान की करो, मेरी नहीं। तो अब इस अध्याय में, पूरा अध्याय, इस अध्याय में 27 श्लोक हैं, ये सारे श्लोक पृथु महाराज का गुणगान है। तो आश्चर्य की बात है कि पृथु महाराज ने मना किया लेकिन फिर भी बंदी जन भगवान के अवतार पृथु महाराज का गुणगान कर रहे हैं। तो क्या ये उनकी अवहेलना है? उन्होंने मना किया नहीं करना फिर भी वो कर रहे हैं, तो क्या ये उनकी अवहेलना है, उनके आदेश का पालन नहीं है? और भगवान के अवतार उनके आदेश का पालन नहीं हो तो ये तो सत्य ठीक नहीं है। तो इसीलिए बंदी जन अब गुणगान करने के पहले बोल देते हैं कि आपकी इच्छा नहीं है फिर भी हम गुणगान कर रहे हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण हमें साधुओं ने आदेश दिया है, भक्तों ने आदेश दिया है। तो ये बतलाते हैं कि हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहली चीज हम बड़े उत्सुक हैं आपका गुणगान करने के लिए। आपकी इच्छा नहीं है सुनना लेकिन हम लोग बड़े उत्सुक हैं, इसलिए आपको स्वीकार करना चाहिए। दूसरी चीज, भक्तों के द्वारा हमें आदेश हुआ है, साधुओं के द्वारा आदेश हुआ है, इसलिए भी आपको स्वीकार करना चाहिए। और तीसरी चीज, आप ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनका गुणगान किया जा सकता है। अगर आपका नहीं करेंगे तो फिर किसका करेंगे? भगवान हैं आप, और आप ही का गुणगान नहीं हुआ तो फिर किसका करेंगे? तो ऐसे ये कारण देते हैं बंदी जन, और बड़े अच्छे कारण हैं। पहला कारण कहते हैं कि हम बड़े उत्सुक हैं, अर्थात भगवान से ये कहा जा रहा है कि आप भक्त की उत्सुकता को देखकर अपने नियम, अपने प्रण या अपनी इच्छा को त्याग दीजिए, और भगवान को इसमें प्रसन्नता होती है। भगवान जब भक्त की उत्सुकता को देखकर अपने प्रण या अपनी इच्छा को त्यागते हैं तो दुखी नहीं होते बल्कि बड़े प्रसन्न होते हैं। जिस समय भगवान ने महाभारत के युद्ध में चक्र उठा लिया भीष्म को मारने के लिए, अपनी ही प्रतिज्ञा को तोड़ रहे हैं, प्रतिज्ञा कर ली थी उन्होंने कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, युद्ध नहीं करूंगा, किसी की हत्या नहीं करूंगा। वैसे तो उन्होंने ही मारा सबको लेकिन उन्होंने प्रण कर लिया और फिर उस प्रण को तोड़ दिया उन्होंने, लेकिन वो प्रण तोड़ने में दुखी नहीं हुए वो कि हाय हाय मेरा प्रण टूट गया, कितना अपराध हो गया, कितनी बुरी बात है। नहीं, बड़ी प्रसन्नता से उन्होंने उस वचन को तोड़ा, बड़े आनंद से अपने वचन को तोड़ते हैं। क्यों? भक्तों की प्रसन्नता के लिए, भीष्म देव की प्रसन्नता के लिए। भीष्म देव ने वचन लिया था कि या तो कल मैं अर्जुन को मारूंगा या कृष्ण तुम्हारा वचन तोड़वाऊंगा, और उनकी बातों को रखने के लिए कृष्ण ने अपना वचन तोड़ दिया बड़ी प्रसन्नता से। भगवान कुछ भी करते हैं भक्तों के वचनों को सत्य करने के लिए। सत्यम विधातुं निज भृत्य भाषितम, भगवान अपने भक्त के शब्दों को सत्य करने के लिए आधा नर और आधा सिंह भी बन जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कह दिया कि ठीक है, कोई तुम्हें पशु नहीं मारेगा, मनुष्य नहीं मारेगा, तो कौन मारेगा? आधा पशु आधा मनुष्य। तो भगवान वो भी स्वीकार करने तैयार हैं और बड़ी प्रसन्नता से सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए। तो ये भगवान है, इसीलिए उन्हें भक्त वत्सल कहा जाता है। भक्त वत्सल का अर्थ होता है ऐसी गाय जो अपने वत्स, अपने बछड़े के प्रति कुछ भी करने को तैयार है। हम नहीं जानते आप में से कितने लोगों ने देखा है जब गाय जन्म देती है अपने बछड़े को तो कितना प्यार करती है। बछड़ा जन्म लेता है, गंदा होता है, सब खून लगा होता है उसके शरीर पे, गाय चाट चाट कर साफ करती है और हमेशा अपने पास रखती है उसको, जाने नहीं देती कहीं पर, और कोई अगर उसके पास आए तो उसको मारती है, दूर हटाती है। हमने देखा था हमारे गौशाला में एक छोटा सा बच्चा हुआ तो उसकी माँ इतनी आसक्त, जहां जहां वो भागता पीछे पीछे भागती, जबकि ये बहुत बड़ी थी गाय, बच्चा छोटा सा था, भागता था इधर उधर, लेकिन वो पीछे पीछे जाती थी। तो अगर हमें कहीं गाय को ले जाना होता था तो हम लोग बछड़े को ले जाते थे, वो अपने आप पीछे आ जाती थी, कुछ कहना नहीं पड़ता था। तो बड़ा प्रेम होता है गाय को वत्स से, बछड़े से, सब कुछ करती है उसके लिए, उसकी रक्षा करती है, उसको साफ करती है, और जब भी उसको देखती है उसको चाटने लगती है, प्रेम करती है। ऐसे हैं भगवान श्री कृष्ण, इसीलिए भक्त वत्सल। तो पहला कारण बंदी जनों ने दिया कि हम आपका गुणगान कर रहे हैं क्योंकि हमारी इच्छा है, हम करना चाहते हैं, हम बड़े उत्साह में हैं, इसलिए आप अपनी इच्छा को त्याग दीजिए। दूसरा कारण उन्होंने दिया, हमें साधुओं ने आदेश दिया है, क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान साधुओं के आदेश के अविरुद्ध नहीं जाते हैं, भले ही उनको कष्ट हो, लेकिन अगर साधुओं ने आदेश दे दिया भगवान बंध जाते हैं। जैसे अर्च विग्रह क्या है? अर्च विग्रह भगवान के प्रेम का पूर्ण प्राकट्य है कि किसी महान भक्त, किसी भगवान के शुद्ध भक्त ने कह दिया बस आप अब यहीं रहिए, इस विग्रह रूप में रहिए, और भगवान वहीं खड़े रहते, बंद जाते, हिल भी नहीं पाते, भोग लगता है तो उठा भी नहीं पाते, जब तक पुजारी लगाता नहीं खाते नहीं है, जब तक कपड़े नहीं बदलते भगवान वही कपड़े पहने रहते हैं। क्या भगवान में शक्ति नहीं है? अब कपड़े तो यहीं रहते हैं पास में, तो अगर पुजारी नहीं आया, लेट आया, अपने आप हाथ उठाकर पहन ले कपड़े, नहीं, खड़े रहते। ये प्रेम का बंधन है, तो इसीलिए कहा गया विग्रह भगवान के प्रेम का पूर्ण प्राकट्य है, पूर्ण रूप से समर्पण कर देते हैं वो उस पुजारी के प्रति। और वो पुजारी कौन है? वो पुजारी कोई शुद्ध भक्त नहीं है, है ना? पुजारी कोई शुद्ध भक्त नहीं है, ऐसा नहीं है कि पुजारी एकदम शुद्ध भक्त है तो भगवान समर्पण, फिर भी उसको समर्पित कर देते हैं। क्यों? क्योंकि किसी शुद्ध भक्त ने भगवान से प्रार्थना की है कि आप विग्रह रूप में यहां रहिए इस मंदिर में, तो फिर वो रह जाते हैं, बस उनकी बातों को रखने के लिए। तो साधुओं की बातों को कभी नहीं टालते भगवान, साधुओं ने कह दिया भगवान ने मानना ही मानना, कोई भी बात हो भक्तों की बात को नहीं टालते, और भक्तों की बात को सदैव सत्य करते हैं। इसीलिए अर्जुन से भगवत गीता में कहते हैं कौन्तेय प्रतिज्ञानी ही नमे भक्ता प्रणश्यति, कि हे कुंती पुत्र तुम जाकर घोषणा करो, मैं नहीं कहूंगा, तुम जाकर कहो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। तो अर्जुन ने पूछा, मानो पूछ लिया हो, भाई मैं क्यों कहूं, आप इतनी भगवत गीता कह रहे हो, इतना ज्ञान दे रहे हो, आप ही कह दो कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम जाकर कहो, क्योंकि सारा जगत जानता है मेरी कही हुई बात को मैं नकार सकता हूं, लेकिन भक्त की कही हुई बात को कभी नहीं नकारता, इसीलिए तुम जाकर कहो। तो ये दूसरा कारण उन्होंने दिया कि क्योंकि साधुओं ने हमें कह दिया है, उनका आदेश है, तो आपको तो मानना ही है, इसलिए आप नाराज नहीं हुई है। और तीसरा कारण उन्होंने दिया कि आप ही तो एक ऐसी वस्तु हैं, एक ऐसे विषय हैं, एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका गुणगान कर सकते हैं, अन्य किसका गुणगान किया जाए। अर्थात वो कह रहे थे कि अगर आप अपना गुणगान नहीं करने देंगे तो फिर हमें देवी देवताओं का गुणगान करना पड़ेगा, हमें किसी शक्तिशाली व्यक्ति का गुणगान करना पड़ेगा, और नहीं तो और हमें अपना ही गुणगान करना पड़ेगा। इसीलिए हमें बचाने के लिए इन सब से आप हमारे गुणगान को स्वीकार कीजिए। तो बहुत सुंदर बात उन्होंने कही कि भगवान ही एक हैं जिनका गुणगान हो सकता है, इस जगत में और कोई न तो ऐसी वस्तु है न कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका गुणगान हो सकता है। क्योंकि आप जिसका भी गुणगान करने जाएंगे उसके गुण ये होंगे कि वो भगवान से जुड़ा। जैसे हम कह सकते हैं अरे क्यों भगवान क्यों, भक्तों का भी तो गुणगान हो सकता है। तो भक्तों का गुणगान क्या है, भक्तों का महत्व क्या है कि वो भगवान से जुड़े हैं, यही उनका महत्व है, यही उनका गुण है कि वो भगवान के बड़े निकट हैं। तो अगर हम भक्तों का भी गुणगान कर रहे हैं तो गुणगान तो दरअसल भगवान का हो रहा, क्योंकि हम भक्तों का क्या गुणगान करते हैं, आप बड़े महान हैं, आप अनासक्त हैं, आप पूर्ण रूप से कृष्ण में आसक्त हैं, तो गुणगान तो कृष्ण का है। तो इसीलिए भक्त का क्या महत्व है, भगवान के बिना क्या महत्व है भक्त का। हम लोग श्रील प्रभुपाद का गुणगान करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उनके जीवन से कृष्ण को निकाल दीजिए, भक्ति को निकाल दीजिए, कौन गुणगान करेगा। इसीलिए बंदी जन कह रहे हैं कि एक आप ही हैं जिनका गुणगान कर सकते, नहीं तो किसका गुणगान करें हम, आपका गुणगान नहीं। हम जब भगवान कहते हैं तो भगवान मतलब अकेले कृष्ण नहीं, जैसे जब हम राजा कहते हैं तो राजा का मतलब अकेले राजा नहीं होता है, राजा मतलब राज्य होना चाहिए, मंत्री होने चाहिए, प्रजा होनी चाहिए, उसको राजा कहते हैं। हम किसी को राजा कहें और कहें उसके पास राज्य नहीं है, मंत्री नहीं है, प्रजा नहीं है, फिर काहे का राजा हो। इसी तरह जब भगवान कहा जाता है तो अकेले भगवान नहीं, भगवान, भगवान के भक्त, भगवान का धाम, ये सब आ जाता है। इसीलिए कहा गया है आराध्य भगवान ब्रजेश तनयस तद धाम वृंदावनम। जिस तरह भगवान आराध्य हैं, श्री कृष्ण आराध्य हैं, तद धाम वृंदावनम, उनका धाम वृंदावन भी आराध्य है। रम्या काचित उपासना ब्रजवधू, और उनके भक्त भी उपासित हैं। तो ये मार्ग है। तो इसलिए जब भगवान कहा जाता है तो सबका गुणगान होता है। तो बंदी जन कह रहे हैं कि आप ही एक हैं गुणगान करने योग्य, हम किसका गुणगान करेंगे, इसीलिए हमें रोकिए नहीं। तो ये कारण उन्होंने दिए, बहुत महत्वपूर्ण कारण, जिसके द्वारा भगवान का वो गुणगान कर रहे हैं। और फिर वो कहते हैं इस श्लोक में, नालम, हम, हमारे अंदर शक्ति नहीं है, हम योग्य नहीं हैं, फिर भी कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और प्रभु बात तात्पर्य के अंत में लिखते हैं कि हमें किसी न किसी तरह से जितनी क्षमता है भगवान का गुणगान करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ब्रह्मा जी शिव, और ब्रह्मा शिव तो छोड़िए, अनंत जो भगवान के अंश अवतार हैं वो भी भगवान का गुणगान नहीं कर पाते तो हमारे अंदर क्या शक्ति है, फिर हमें नहीं करना चाहिए। प्रभु बात कहते हैं नहीं, भले हमारे अंदर शक्ति नहीं है, कोई गुण नहीं है, योग्यता नहीं है, फिर भी भगवान का गुणगान करना चाहिए, उसी से योग्यता आएगी, उसी से शुद्धता आएगी। तो इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य के अंत में लिखते हैं कि जैसे भी हो हमें गुणगान करना चाहिए, लेकिन हो सके तो आचार्यों के आदेशानुसार, भक्तों के द्वारा कहा गया। इसीलिए जब भगवान का गुणगान उत्तम श्लोकों से किया जाता है, भजनों से किया जाता है, तो उन भजनों को हमें दोहराना चाहिए जो आचार्यों ने लिखे हैं, क्योंकि आचार्यों की वाणी से कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। तो जितनी भी त्रुटियां हैं हमारे अंदर वो दूर हो जाएंगी अगर हम आचार्यों के द्वारा रचित भजनों को, शिक्षाओं को दोहराएंगे। और यही परंपरा है, यही हमारी योग्यता है। भक्त की, एक शिष्य की एक ही योग्यता होती है कि वो अपने गुरु के शब्दों को दोहराता है, और कोई योग्यता नहीं हो सकती। अगर वो गुरु के शब्दों को दोहरा रहा है, परंपरा में आए हुए ज्ञान को पुनः दोहरा रहा है, आचार्यों की वाणी भजनों को दोहरा रहा है वो पूर्ण है। प्रभुपाद लिखते हैं एक स्थान पर, हो सकता है हम पूर्ण नहीं हैं, लेकिन जो ज्ञान हम दे रहे हैं वो पूर्ण है, इसीलिए आप उसको स्वीकार करके पूर्ण बन सकते हैं। तो ये परंपरा है, तो ऐसे परंपरा में हमें ज्ञान को स्वीकार करना चाहिए। तो फिर बंदीजनों ने अब पृथु महाराज का गुणगान करना प्रारंभ किया। तो पहले तो उनसे कह दिया कि हम क्यों करेंगे आपका, आप नाराज नहीं होइए। अर्थात वो ये दिखला रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हम अवहेलना कर रहे हैं आपके आदेश की, आपने कहा मत करो फिर भी हम कर रहे हैं, तो अवहेलना नहीं है, अनुमति ले ली उन्होंने और अब गुणगान करना शुरू किया। तो उन्होंने कहा कि धर्म के विषय में पृथु महाराज कई चीजों को करेंगे। पहली चीज, धर्म को अच्छी तरह से अपने जीवन में धारण करेंगे। तो ये सब हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है, इसलिए हम आपसे कई बार कहते हैं कि जब भागवत के इन श्लोकों को हम सुने तो इसको केवल एक भागवत क्लास का नहीं माने कि हाँ हमें जाकर बैठना है, अगर कुछ देर आंखें खुली रहीं तो खुली रहीं, नहीं तो बंद रखनी है। इसको जीवन के उपदेश मानिए, और अगर इसको जीवन के उपदेश मानकर आप इस तरह से भागवत श्रवण करेंगे, इनसे सीखेंगे, तो निश्चित भगवान को प्राप्त करेंगे। प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति एक प्रामाणिक गुरु से केवल भगवत गीता भागवत का श्रवण करता है तो निश्चित कृष्ण को प्राप्त करेगा। तो इसीलिए हमें इनसे सीखना चाहिए कि हमारे जीवन में हम क्या इस कैसे पालन कर सकते हैं। तो पृथु महाराज के विषय में कहते हैं कि पहली चीज, ये धर्म को धारण करेंगे। धारण करेंगे अर्थात अपने जीवन में पालन करेंगे व्यक्तिगत तौर पर धर्म का। दूसरी चीज वो कहते हैं कि धर्म का पालन ही नहीं करेंगे, ये धर्म की रक्षा भी करेंगे। तो ये रक्षा करेंगे धर्म की, धर्म को स्थापित करके। और तीसरी चीज, ऐसे लोग जो अधर्मी हैं, जो धर्म को तोड़ते हैं, उनको ये दंड देंगे। और चौथी चीज, सारे जगत में सत धर्म की स्थापना करेंगे। तो धर्म को हमें भी यही चार चीजें करनी है। पहली चीज, हमें बनाए रखना है धर्म को अपने जीवन में। व्यक्तिगत तौर पर कड़ाई से धर्म का पालन होना चाहिए, धर्म को त्यागना नहीं चाहिए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अगर जीवन में चार नियमों का हम कड़ाई से पालन करें तो फिर मनुष्य स्तर पर आ सकते हैं, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए जब हम इस संस्था से जुड़ते हैं तो नियमों के पालन का व्रत लेते हैं, तो उस व्रत को बनाए रखना चाहिए। केवल उन व्रतों को बनाए रखना हमारे लिए धर्म पालन है। जैसे हम लोग शराब आदि नहीं पीते, मांस नहीं खाते, किसी प्रकार का नशा नहीं करते, जुआ इत्यादि नहीं खेलते, अवैध संग नहीं करते, इन चारों नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए अपने जीवन में। बहुत कड़क होना चाहिए, कठोरता से इसका पालन होना चाहिए। इन नियमों में कोई भी हमें ढील नहीं देनी चाहिए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जब शुरुआत में आते हैं इन नियमों को सुन लेते हैं, फिर थोड़ा समय चला जाता है, हमें नियम पता होते हैं लेकिन पालन नहीं करते। लेकिन हमें हर क्षण कड़ाई से इसका पालन करना चाहिए। मांसाहार नहीं करना, ऐसी कोई चीज नहीं खाना जो हमारे रजोगुण या तमोगुण को बढ़ाए, जैसे प्याज इत्यादि, या बाहर की किसी वस्तु को नहीं खाना क्योंकि वो भगवान को अर्पित नहीं होती है, किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा बनाई गई होती है जिसकी चेतना शुद्ध नहीं है। साथ ही साथ वो बनाते बनाते, हम लोगों ने कई बार देखा है कहीं कहीं पे लोग बनाते हैं और साथ साथ में टेस्ट करते रहते हैं, इसीलिए वो अर्पण भी नहीं की जा सकती। तो हमें प्रयास करना चाहिए भक्तों के रूप में कि बाहर की किसी भी चीज को स्वीकार नहीं करें, तो मांसाहार नहीं करें, ऐसा कोई भोजन ग्रहण नहीं करें जो भगवान को अर्पित नहीं है, अर्थात केवल प्रसाद ग्रहण करें। शराब आदि मादक चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करें, जिसमें चाय और कॉफी भी आती है, क्योंकि चाय कॉफी भी मादक द्रव्य है, तो हमें ऐसी मादकता में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि ये सब, जैसे लोग शराब पीते हैं किस लिए? दुख को भूलने के लिए। तो इसीलिए शराब का अर्थ है वो जो सत्य है उससे दूर ले जाता है, कृष्ण से दूर ले जाता है। वैसे ही हम सब कृष्ण को भूले हुए हैं और शराब पीकर फिर क्या होगा, और वैसे भी शास्त्रों में ये प्रतिबंधित है। तो इस तरह से, और जुआ नहीं खेलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जुआ खेलने से एक पागलपन बढ़ जाता है। हम सोचते हैं आज नहीं तो कल मैं सुखी हो जाऊंगा, केवल नुकसान होता है। और अवैध संग नहीं करना चाहिए। विवाहित जीवन में केवल अपनी पत्नी के साथ संतान उत्पत्ति के लिए व्यक्ति को संग करना चाहिए, अन्यथा अन्य किसी भी स्त्री के साथ संग की कामना भी नहीं करनी चाहिए। और जो विवाहित नहीं है, ब्रह्मचारी हैं, उन्हें हर स्त्री को माता के रूप में देखना चाहिए। तो ऐसे नियम का पालन करके हम धर्म को बना सकते हैं। दूसरा कार्य पृथु महाराज करेंगे कि वो रक्षण करेंगे धर्म का। तो पहले खुद पालन करना, फिर रक्षण करना। और तीसरी चीज, ऐसे लोग जो अधर्मी हैं, धर्म को तोड़ेंगे, उनको पृथु महाराज दंड देंगे। ये भी बहुत आवश्यक है कि हम, जैसे कहा गया, अपने क्रोध को, अपने द्वेष को उन लोगों के प्रति लगाना है जो भगवान के द्वेषी हैं, जैसे हनुमान जी ने लगाया, जैसे अर्जुन ने लगाया। जो लोग भगवान का विरोध कर रहे हैं, भक्तों का विरोध कर रहे हैं, उनके प्रति क्रोध और द्वेष, तो उनको दंड देना। और साथ ही साथ सारे समाज में धर्म को स्थापित करना, अर्थात अपनी क्षमता के अनुसार हमें धर्म का प्रचार करना चाहिए। हर व्यक्ति, हर भक्त धर्म का प्रचारक हो सकता है। ये आवश्यक नहीं है कि वो बहुत अच्छे अच्छे प्रवचन दे, ये आवश्यक नहीं है कि उसको सारे शास्त्र पता हो। हर व्यक्ति, आप में से हर व्यक्ति प्रचारक है। कोई व्यक्ति ज्ञान देकर प्रचार करता है, कोई आचरण से प्रचार करता है, कोई सुविधाएं प्रदान करके प्रचार करता है। जैसे मान लीजिए एक छोटी सी बात, जैसे कोई भक्त भगवान के लिए हार बनाते हैं, बस उनका वही सेवा है। वो तो सोच सकते हैं, हम तो कुछ प्रचार नहीं कर सकते, हमें प्रवचन देना नहीं आता, हमें शास्त्र बोलना नहीं आता। लेकिन वे भी प्रचारक हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो बहुत सुंदर हार भगवान के लिए बनाते हैं और वो भगवान को पहनाते हैं, और जब लोग बाहर के देखने आते हैं, दर्शन करते हैं, प्रभावित होते हैं, उनको पता चलता है कि हाँ, भगवान की ऐसी सेवा होनी चाहिए, तो भगवान के सुंदर श्रृंगार से, सुंदर हार से वो भगवान की ओर आकर्षित होते हैं, बारंबार दर्शन करने के लिए आने की कामना करते हैं। ये प्रचार। अगर मान लीजिए कोई हमारे मंदिर में आता है और क्या देखता है, ना ठीक से कपड़े पहनाए हुए हैं भगवान को, ना श्रृंगार किया हुआ है, हार भी ऐसे ही मान लीजिए सूखे फूलों का पड़ा हुआ है, गंदा सा पड़ा हुआ है, या नहीं है, तो फिर उनकी कामना नहीं होगी फिर से आने की भगवान। तो हमने गलत प्रचार कर दिया। तो इसीलिए हर व्यक्ति प्रचारक है। अपनी अपनी स्थिति में रहते हुए हमें प्रचार करना चाहिए। कोई ऐसा भक्त नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्रचार नहीं कर सकता। चाहे हम सुविधाएं प्रदान करके प्रचार करें, ज्ञान प्रदान करके प्रचार करें, सहायता करके प्रचार करें। कई ऐसे लोग हैं जो कुछ नहीं कर पाते, लेकिन थोड़ा धन देते हैं मंदिर में कि ठीक है, आप लोग प्रचार कर रहे हैं आपके लिए, वो भी प्रचारक है। क्योंकि अगर वो धन नहीं देगा तो हम कैसे प्रचार में लगेंगे, कैसे मंदिर को चलाएंगे। इसीलिए हर व्यक्ति जो भगवान से जुड़ा है प्रचारक है, और हमें अपनी अपनी स्थिति में रहकर निश्चित प्रचार करना चाहिए। तो ऐसे पृथु महाराज के गुणों को कहा, और फिर पृथु महाराज के कहने लगे कि इनके शरीर में सारे देवताओं का वास है, ये हर देवता की तरह कार्य करेंगे। और फिर कई देवताओं का वर्णन करने लगे। उन्होंने वर्णन प्रारंभ किया सूर्य देव से कि जैसे सूर्य 8 महीने तक जल को खींचते रहते हैं, अपनी किरणों से जल को इकट्ठा करते हैं समुद्र से, लेकिन फिर वही जल 4 महीने पृथ्वी पर बरसा देते हैं। इसी तरह पृथु महाराज जनता से कर इकट्ठा करेंगे, लेकिन उस कर का उपयोग उनके ही लाभ के लिए करेंगे। प्रभुपाद लिखते हैं कि हर सरकार को ये सीखना चाहिए कि अगर वो कर ले रहे हैं तो कर इसलिए नहीं हो ताकि मंत्रियों की गाड़ियां चलती रहें, ताकि मंत्रियों के बंगले बने रहें, मंत्रियों के आगे पीछे पुलिस घूमती रहे। ये कर देने का लाभ नहीं है। कर लेते हैं तो जनता की सेवा होनी चाहिए। वैसे भक्ति के दृष्टि से भी हम इन सारी चीजों से सीख सकते हैं। तो जैसे सूर्य जल लेता है और फिर पृथ्वी पर दे देता है उसी जल को, जैसे राजा कर लेता है और फिर लोगों में उनकी सुविधा प्रदान करने के लिए बांट देता है, ऐसे ही एक भक्त को जो भी समाज से वो लेता है, भक्ति के ज्ञान को ग्रहण करता है, भक्ति के सिद्धांतों को ग्रहण करता है, तो उसे उन ज्ञान को दे देना चाहिए लोगों को। एक साधु वो है जो जितना समाज से लेता है उससे अधिक समाज को देता है, वो साधु है। केवल इस जगत में रहते हुए अगर कोई मनुष्य समाज से ले रहा है केवल, वो तो पशु है, वो तो मनुष्य है ही नहीं, जो केवल अपने लिए ले रहा है, जो केवल अपने लिए जी रहा है। मनुष्य तो वो है जो जितना ले उतना वापस करे समाज को, उसे मनुष्य कहते हैं। इसलिए इस जगत में जो लोग बहुत ज्यादा धन कमा रहे हैं लेकिन समाज के लिए कुछ नहीं करते, भगवान के लिए कुछ नहीं करते, वे पशु हैं। लेकिन वे लोग जो कमा भी रहे हैं, सारी सुविधाएं हैं, साथ साथ भगवान के लिए भी कुछ करते हैं, समाज के लिए करते हैं, वे कम से कम मनुष्य कहलाए जा सकते हैं। लेकिन इनमें श्रेष्ठ वो लोग हैं जिन्हें साधु कहा जाता है, जो जितना बहुत थोड़ा समाज से लेते हैं, जितना आवश्यकता है शरीर को बनाए रखने के लिए, लेकिन उसका कई गुना ज्ञान के रूप में, भक्ति के रूप में, सुविधाओं के रूप में प्रदान करते हैं। जैसे शिला प्रभुपाद, प्रभुपाद ने बहुत सारे दान इकट्ठे किए लोगों से, लेकिन उन सबको मंदिर बनाने में, सुविधाएं बनाने में दिया। आज उसी के कारण हजारों लाखों लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं। ये साधु हैं जिन्होंने जो लिया समाज से उससे कहीं ज्यादा दिया। और जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, वो जो हमें प्रदान करते हैं, उसकी तो तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि वो ऐसी चीज हमें प्रदान करते हैं जो इस जगत के परे है, अनंत है, असीमित है। तो इसलिए पहला उदाहरण सूर्य का पृथु महाराज के विषय में बंदीजन देते हैं कि ये सूर्य के समान होंगे। दूसरा उदाहरण देते हैं कि ये भूमि के समान होंगे, पृथ्वी के समान सहनशील। क्या सहन करेंगे? ये उन सारे लोगों को सहन करेंगे जो इनके बनाए हुए नियम का कभी कभी पालन नहीं करेंगे, इनका विरोध करेंगे, लेकिन ऐसे लोगों को भी ये सहन करेंगे जैसे पृथ्वी सहन करती है। पृथ्वी के लिए ये पर्वत, बड़ी बड़ी नदियां, बड़े बड़े वृक्ष, ये कोई भार नहीं है। पृथ्वी के लिए भार है अधर्मी व्यक्ति, पृथ्वी के लिए भार है झूठा व्यक्ति, पृथ्वी के लिए भार है धोखेबाज, छल करने वाला, कपटी व्यक्ति। ये पृथ्वी का भार है। तो आप सोच सकते हैं इस कलयुग में पृथ्वी कितने भार को उठा रही है, लेकिन सहनशील है। प्रदान करती है वो सब चीजों को, सारी चीजों को प्रदान करती है, सहनशील है। और भगवान कितने सहनशील हैं। एक कथा है, एक बार एक भक्त ने किसी व्यक्ति को घर पर प्रसाद के लिए बुलाया। ये जो बुलाया जिस व्यक्ति को, ये नास्तिक था, भगवान में विश्वास नहीं करता था। तो इसने सोचा कि थोड़ा इसको अच्छा प्रसाद खिला के इसको भक्त बनाएंगे। तो वो आए घर पर, उन्होंने बढ़िया भगवान का प्रसाद खिलाया। प्रसाद खिलाने के बाद बैठकर थोड़ा प्रचार करने लगे कि देखो ये सब भगवान की कृपा है, भगवान के कारण ये जगत चल रहा है। तो व्यक्ति बड़ा क्रोधित हो गया, ये क्या भगवान भगवान की बातें कर रहे हो आप, कोई भगवान नहीं होता, मैं नहीं मानता भगवान को। तो इनको बड़ा दुख हुआ, वो व्यक्ति चला गया गुस्सा होकर। और ये जो भक्त बड़े दुखी हो गए कि कैसे नास्तिक को मैंने प्रसाद खिला दिया, इसको तो कुछ नहीं देना चाहिए था। तो बड़े गुस्से में हो गए, क्रोध में हो गए, रोने लगे कि क्या कर दिया मैंने, भगवान का प्रसाद ऐसे नास्तिक को खिला दिया। तो उस समय भगवान प्रकट हुए और भगवान उनसे बोलने लगे, क्यों रो रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैंने आपका प्रसाद, भगवान का प्रसाद ऐसे नास्तिक व्यक्ति को खिला दिया, बड़ा अपराध हो गया, मुझे नहीं करना था। तो भगवान ने कहा कि तुमने एक नास्तिक को मेरा प्रसाद खिला दिया या मेरा भोजन करा दिया, इसलिए इतने दुखी हो रहे हो, मेरे बारे में सोचो, मैं कितने सारे नास्तिकों को कब से खिला रहा हूं, है ना? तो मुझे कितना गुस्सा होना चाहिए, मैं नहीं होता हूं गुस्सा, पर सही है ना, कितने नास्तिकों को भगवान खिला रहे हैं। कर मना किया भगवान ने कि नहीं खाना चाहिए नास्तिक हो। तो इसीलिए सहिष्णुता, सहनशीलता बहुत आवश्यक है, हमें सहनशील बनना चाहिए। कभी कभी हम लोग एक दूसरे के प्रति सहनशील नहीं रहते, हम एक दूसरे को सहन नहीं कर पाते। सहनशीलताओं में कई प्रकार की सहनशीलता होती है। सबसे पहले तो हमें अपने शरीर के वेगों को सहन करना होता है, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम। तो अपने शरीर के जो वेग हैं, अर्थात वाचा बोलने का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग सहन नहीं होता। क्रोध आ जाता है, हम लोग कुछ भी बोल देते हैं, बाद में लगता है अरे अरे क्या गलती कर दी। साथ ही साथ उदर, पेट का, खाने के जब भूख लगती है तो कहां सहन होता है, कहां भागवत के शब्द कान में जाते हैं, फिर तो केवल पूरी सब्जी ध्यान आती है। इसीलिए एकादशी के दिन लोगों को कई तकलीफ हो जाती है, एकादशी में राइस नहीं मिलता, चपाती नहीं मिलती, आज एकादशी है ना। तो सहिष्णुता, वेग, शरीर के जो वेग है, ये पहली सहिष्णुता। फिर दूसरी है परमत्त सहिष्णुता। परमत्त मतलब दूसरे के मत को, विचार को सहन करना सीखना, वो भी हमसे नहीं होता। हम सोचते हैं हमारा विचार ही ठीक है, इसीलिए झगड़े होते हैं, क्योंकि व्यक्ति सहन करना नहीं जानता। हमें दूसरों के बारे में निर्णय लेने से पहले जानकार जिज्ञासु बनना चाहिए, जिज्ञासु व्यक्ति बनना चाहिए, हमें न्यायाधीश नहीं बनना चाहिए। क्योंकि जब व्यक्ति न्यायाधीश बनता है तो निश्चित दूसरे के बारे में निर्णय सुना देता है, लेकिन जब जिज्ञासु बनता है तो जानने का प्रयास करता है कि ये व्यक्ति जो मुझे कह रहा है क्या इसमें सत्य है, क्या ये सही है, हो सकता है मैं गलत हूं। इसको सहिष्णुता कहते हैं, परमत्त सहिष्णुता। दूसरे के मत को सहन करना सीखिए, ये मत सोचिए कि इस जगत में मैं ही श्रेष्ठ हूं, मुझसे परे कोई है ही नहीं, मैं ही सारे ज्ञान को जानता हूं, इसलिए जो मैं कहूंगा वो सही होगा। नहीं, दूसरे के मत को सहन करना, सहन करना मतलब उसको स्वीकार करना, उस पर चिंतन मनन करना, हो सकता है वो सही हो सकता है वो गलत हो, लेकिन कम से कम उसको सुनना, ये कहलाता है परमत्त सहिष्णुता। और तीसरी चीज जो हम सहिष्णुता के विषय में सीखते हैं सहनशीलता, वो है परोत्कर्ष सहिष्णुता। परोत्कर्ष मतलब जब दूसरे का उत्कर्ष हो रहा है, जब दूसरा ऊपर जा रहा है, प्रगति हो रही है, उसको सहन करना, ये बहुत कष्टदायक है। मत को तो सहन कर सकते, लेकिन जब हम देखते हैं कि हमारे बाद आया हुआ ये छोटा सा लड़का, जिसको मैं ऐसे ही पैंट शर्ट में देखता था, घूमता था, ये इतना अच्छा भक्त बन गया, मुझसे ऊपर चला गया, सहन नहीं होता, हमेशा उसको नीचे खींचने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आप मंदिर की अथॉरिटी हैं और आपने देखा कि कोई दूसरा भक्त बहुत अच्छा प्रवचन करता है, बहुत अच्छा गाता है, तो आप कहेंगे अरे इसको प्रवचन देना बंद कराओ, क्यों, मेरे से अच्छा कहने लगेगा, इसीलिए नहीं देना। तो दूसरे की प्रगति को सहन नहीं कर पाते, है ना, इसको कहते परोत्कर्ष सहिष्णुता। सहन करना चाहिए, सहन ही नहीं प्रसन्न होना चाहिए। अगर हमारे बाद कोई भक्त आकर हमसे तीव्र भक्ति में आगे बढ़ रहा है, प्रसन्न होना चाहिए, भगवान की कृपा उसके ऊपर देखकर आदर करना चाहिए उसका, कि मैं ये नहीं कर पाया लेकिन ये कर रहा है, आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए उससे। इसे कहते हैं परोत्कर्ष सहिष्णुता। तो हमें सहनशील होना चाहिए। जब हम दूसरे को सहन कर रहे हैं तो कैसे सहन करना चाहिए, हमें उसका पिछला जीवन नहीं देखना चाहिए, वर्तमान जीवन नहीं देखना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि ये आगे चलकर क्या कर सकता है, इसको सहन करना कहते हैं। हम सब सहन कर सकते हैं। कभी कभी हमारा जब मतभेद होता है तो हम देखते, मैं जानता हूं ये क्या था पहले, अभी तिलक लगाकर आ गया है, लेकिन मैं सब जानता हूं पहले क्या करता था, कितना गुंडागर्दी करता था, सब पता है। ऐसे व्यक्ति कभी भक्त नहीं बन सकते, नहीं, ये नहीं देखना चाहिए। या फिर वर्तमान, ठीक है थोड़ी बहुत भक्ति कर लेता है, कौन सा श्रेष्ठ, नहीं, हमें देखना चाहिए कि अगर मैंने इसको अभी सहायता की, अगर मैंने इसके साथ मतभेद नहीं किया, इसको मदद की भक्ति में, तो आगे चलकर ये बहुत श्रेष्ठ भक्त बन सकता है, इसीलिए मुझे इसको सहन करना चाहिए। सहन करने का अर्थ दो प्रकार में होता है। एक, हम ये सोचते हैं कि मैं सही हूं लेकिन मैं इसको सहन कर रहा हूं, मैं चुप रहूंगा, ये एक सहन करना होता है। दूसरा सहन करना, हम स्वीकार करें कि हो सकता है ये सही हो, जरूरी नहीं है मैं सही हूं, इसको भी सहन करना कहते हैं। हमें दूसरे प्रकार का सहन करना चाहिए, पहले प्रकार का नहीं कि मैं सही हूं लेकिन चुप रहूंगा, वो सहनशीलता इतनी श्रेष्ठ नहीं। तो इसीलिए सहनशील होना चाहिए भूमि की तरह हम सबको, ताकि हम सब भगवान को प्रसन्न कर सकें। श्रील प्रभुपाद एक स्थान पर कहते हैं कि व्यक्ति की महानता उससे जांची जाती है कि वो ऐसी स्थितियों में जहां उसको बहुत ज्यादा प्रेरित किया जा रहा है सहनशील ना होने के लिए, फिर भी वो सहनशील बना रहता है, इससे उसकी महानता को पता चलता है। द ग्रेटनेस ऑफ अ पर्सन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय हाउ टॉलरेंट ही इज इन प्रोवोकिंग सिचुएशंस। ऐसी स्थिति जहां उसके क्रोध को बढ़ना है, उसको सहन नहीं कर पा रहा, लेकिन उसमें भी वो कैसे सहनशील बनता है, ये उसकी महानता। तो ऐसे सहनशीलता का वर्णन भूमि देवी से, उनको सहन करना, वो भूमि की तरह सहनशील होंगे। आगे बहुत से उनके गुणों का वर्णन है, समय नहीं है, इसीलिए कल इस अध्याय को और चर्चा हम लोग करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आगे के जो गुण हैं हमारे लिए सब बड़े महत्वपूर्ण हैं, जैसे आज कुछ गुणों को पृथु महाराज के लक्षणों से हमने सीखा, कल और गुणों की चर्चा इसमें करेंगे।